हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 20 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता, वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से मैं अपने वचन से किसी तरह विचलित नहीं हो सकता हूँ। मैं किस तरह एक सामान्य भक्षक का आचरण कर सकता हूँ, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति? असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से इस बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता, जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। अतः यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों दान से संतुष्ट नहीं होते, तो क्यों ना उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। दधीचि, शिबि और अन्य अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे, इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों ना त्याग दिया जाए, इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है, जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने युद्ध से ना डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी विरले को ही मिलता है। जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है, दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है, विशेषतया तब वह आप जैसे पुरुष को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। हे महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्मठ कांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया भिज्ञ है, सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। अतः वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हो या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और उनके द्वारा मांगी गई भूमि बिना हिचक से उन्हें दे दूं। यद्यपि वे साक्षात विष्णु है, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वह अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर धराशाही हो जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि उनके गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथा कथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने धृष्ट होकर तो तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। बलि महाराज की पत्नी विद्यावली जो गले में मोतियों का हार पहने थी वहां पर तुरंत आई और भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने हाथ अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। उस समय स्वर्गलोक के निवासी यथा देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सहज द्वैत रहित कृत्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। गंधर्वों, किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुग्धियां एवं तुरहियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में है, तो भी वे उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। तब अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे। वहां तक कि ब्राह्मण की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, उनके शरीर के भीतर समा गए। बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों, आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। सारे भौतिक तत्व, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथा रसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलवों पर देखा। उन्होंने भगवान के पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकार मरुदगण को देखा। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी। उनके गुप्त अंगों में प्रजापतियों को देखा और उनके कटि प्रदेश के गोल भाग में उन्होंने अपने को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र और उनके वक्षस्थल में तारों के सारे समूह को देखा। हे राजन, उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में धर्म, वक्षस्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद और सारी शब्द ध्वनियां, बाहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल, नथनों में वायु, आंखों में सूर्य और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्द के सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता वरुण देव थे। उनके भावों पर विविध विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच था। हे राजन, उनके स्पर्श में कामेच्छाएं, उनके वीर में सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी, उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां तथा लताएं थीं, उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषि गण और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। हे राजन, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, और जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा जो असहाय ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण टंकार सुनी तो इन सब के कारण उनके हृदयों में विषाद उत्पन्न हो उठा। बादल की सी गर्जना करने वाला भगवान का पांचजन्य नामक शंख अत्यंत वेगवान कौमुद की नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्ह से अलंकृत ढाल एवं तर्कसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। सुनंदन तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने भगवान की स्तुति की। जो चमकीला मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने हुए थे, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे। वे पीत वस्त्र पहने थे जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला से सज्जित थे जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। हे राजा, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्गलोक आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि ना बची, क्योंकि भगवान का पग महरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक को भी ऊपर तक फैल गया था। हरे कृष्णा।